अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता।
वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु वर्तमान समाज के उपादेयता के लिए किया जाता है, ये कथन है मेडेल बाम का। इतिहासकार अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करते समय वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास विषय के अध्ययन से भारतवासियों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वर्तमान समय में इतिहास विषय की प्रासंगिकता इस प्रकार है। पहला, अतीत का अध्ययन वर्तमान में आवश्यक। यह ठीक है, वर्तमान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि अतीत महत्वहीन है। वस्तुतः हमारी आज की समस्याओं का जन्म अतीत में ही हुआ था। हम इन समस्याओं का निदान तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक कि हम जान न लें कि अतीत में इनका जन्म कैसे हुआ था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मरीज के पहले के रोग का हवाला जानकर ही कोई नया इलाज करता है। राष्ट्र और संस्थाओं का वर्तमान रूप और व्यवहार उनके अतीत का वर्णन है। दूसरा, बौद्धिक संतोष की प्राप्ति। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन वर्तमान में प्रासंगिक है, क्योंकि इससे भारतीयों को अपने अतीत का पूर्ण ज्ञान होता है। प्रोफेसर इल्टन का कहना है कि अतीत को समझने में एक उच्च कोटि का भावनात्मक संतोष प्राप्त होता है। तीसरा, इतिहास से सबक सीखना। इतिहास में हुई घटनाओं के कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित कर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो निर्णय लिया था, यद्यपि परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था, परंतु यदि दूरदर्शिता से कार्य किया जाता तो परिणाम हमारे अनुकूल होते। उदाहरण के लिए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराई के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। यदि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद गजनी जाने नहीं दिया होता और उसे बंदी बनाकर उसका जीवन समाप्त कर देता, तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता, जैसा कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किया। उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मार दिया था। यदि हम अतीत की त्रुटियों को पुनः न दोहराते तो देश दीर्घ काल तक गुलामी की जंजीरों में न जकड़ा होता। चौथा, सामाजिक विषमताओं को दूर करना। प्राचीन काल में ही भारत में जाति व्यवस्था का जटिल रूप स्थापित हो चुका था, जिसमें शूद्रों को सबसे निम्न माना जाता था। उनके साथ छुआछूत और भेदभाव की नीति अपनाई गई। इस सामाजिक अन्याय को हमें दूर करना होगा, तभी राष्ट्र की प्रगति संभव है। यद्यपि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति समाज में उच्च थी, लेकिन कालांतर में स्त्रियों की दशा धीरे धीरे अत्यधिक शोचनीय हो गई। वर्तमान भारत के संविधान द्वारा नारियों को समानता का अधिकार प्राप्त हो गया है, परंतु समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हुई हैं। पांचवा, गौरवशाली अतीत का ज्ञान। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत का ज्ञान प्राप्त हुआ, विशेषकर जब पश्चिमी इतिहासकारों ने रुचि लेकर भारत की अतीत की जानकारी प्राप्त की और जनमानस के सामने रखी। उससे भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व की अनुभूति हुई और विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। छठवां, वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए। कालांतर में हम जो भी समस्याओं का सामना करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है, जिसके आधार पर हम अपने वर्तमान को संजो सकते हैं। जैसे मुगल शासक अकबर ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्य बनाने के लिए हिंदुओं, विशेषकर वीर जाति राजपूतों से मधुर संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। वहीं मुगल शासक औरंगजेब ने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया, जिससे शीघ्र ही मुगल वंश का पतन हो गया। सातवां, भारत की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। अतीत काल में भारतवासी कैसे रहते थे, किस तरह जीवन यापन करते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, वे कौन कौन सी परंपराओं और रीति रिवाज को अपनाते थे, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मस्तिष्क को उद्वेलित करते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहास विषय के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। हमारी वर्तमान भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन और चिरस्थायी है। इस संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने में कौन कौन से मूल तत्व विद्यमान है, इस बात की जानकारी हमें अतीत के गहन अध्ययन के उपरांत ही प्राप्त होगी। हुमायूं कबीर का कहना है कि भारतीय संस्कृति की कहानी एकता तथा समाधानों के एकीकरण और प्राचीन भारतीय परंपराओं के पूर्ण तत्व की कहानी है। सभी संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति की एकता तथा समन्वय सतत और अमर है। आठवां, देश की प्रगति में बाधक तत्वों की पहचान। इंग्लैंड ने जब से भारत को अपना उपनिवेश बनाया, उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भारत में फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विकास में अवरोध उत्पन्न हो गया। जब तक अतीत की इन बुराइयों को, जिन्होंने गहराई तक अपनी जड़ें जमा रखी हैं, दूर नहीं किया जाएगा, भारत की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। जातिवाद और संप्रदायवाद वर्तमान में भारत के विकास में बाधक तत्व है। राम शरण शर्मा के शब्दों में, प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठकर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हमें राष्ट्र की प्रगति के लिए इन सामाजिक विषमताओं को दूर करना होगा।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।